बहुत धन्यवाद आप सभी का और ज्ञानध्वज जी का खास करके। और सही भी अपने बीच में दो बहुत ही पुराने ब्रह्मचारी भी शामिल हो रहे हैं, चंद्रशील जी और विशुद्धानंद। तो बड़ी खुशी की बात है। कल हम ये जो प्रतित्य समुत्पात की कड़ियां हम देख रहे हैं, जिसको हम बारह निदान कहते हैं, उसमें अविद्या देखी थी, और अविद्या का मतलब हमने ये देखा कल कि अविद्या माने दुख है। तो इस अविद्या में हम दुख को भी नहीं जानते, दुख के कारण को भी नहीं जानते, दुख निरोध को भी नहीं जानते, और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा इसको भी नहीं जानते। इसी को अविद्या कहते हैं। यानी जो चार आर्य सत्य है इनको नहीं जानना, यही अविद्या है। बंते जी ने बड़ी अच्छी पंक्तियां इसके लिए कही है, इस अविद्या के लिए, कि अविद्या यह बौद्धिक सर का अज्ञान नहीं है। या आध्यात्मिक जागृति का अभाव नहीं है, उतना ही नहीं तो आध्यात्मिक चेतना और आध्यात्मिक जीवन का भी अभाव नहीं है। तो अविद्या का मतलब है बोधि का अभाव, जहां बोधि नहीं है, संबोधि नहीं है, उसका अभाव, यानी बुद्धत्व के बिल्कुल विपरीत रहना, ये खास करके बताया गया है। अविद्या के बहुत सारी बातें हमने देखी है, मिथ्या धारणाएं देखी, और उन मिथ्या धारणाओं में हम अविद्या को कैसे बढ़ावा देते हैं ये भी हमने देखा। हमने अविद्या के कारण लोग गंगा नदी में डुबकी मारते हैं और अपना पाप धोने की कोशिश करते हैं, लेकिन डुबकी मारने से कभी पाप धोया नहीं जा सकता। तो ये भी देखा हमने। संस्कार के बारे में भी हमने देखा कि संस्कार का मतलब है प्रिपरेशन या सेटिंग अप, तैयारी करना। और हमने ये भी देखा कि अविद्या और संस्कार ये कैसे हमें आगे लेके जाते हैं, और ऐसा हम कह सकते हैं कि वो हमें खाई में ढकेल देते हैं। हमने ये भी देखा था अविद्या और संस्कार को देखते हुए कि अविद्या माने नशीलापन है, और संस्कार का मतलब है उस नशे में झूमना। ये भी बात हमने कल देखी थी। और अंतिमतः हमने ये भी देखा था कि अविद्या और संस्कार यह पारंपरिक तौर पर पिछले जन्म का कर्म प्रोसेस है, ये भी देखने की हमने कोशिश की थी। कल बोलते बोलते मैं ऐसा बोल गया कि हम तो आध्यात्मिक नहीं हैं, और आध्यात्मिकता कब शुरू होती है? अनागारी, सॉरी, अनागामी अवस्था प्राप्त होने तक। सब लोग जरा चौंक गए और एक प्रकार का बवंडर पैदा हो गया कि ये क्या कह रहे हैं ये। तो इसलिए मैंने ये आज एक ड्राइंग निकाल के बताने की कोशिश कर रहा हूं कि मैंने जो कहा वो गलत नहीं है। तो इससे हम जरा उसको समझ सकते हैं कि ये दो सर्कल बताए हैं, दो सर्कल में एक है मंडेन सर्कल, ये नीचे वाला, या लौकिक या सांसारिक वगैरह इसको कहते हैं, कह सकते हैं। दूसरा है आध्यात्मिक है, लोकोत्तर है, निर्वाण है, वो दूसरा सर्कल है। और ये दोनों सर्कल एक दूसरे से टकराते हैं, एक दूसरे के अंदर से गए हुए हैं वो, और वो बीच वाली जो लाइन है उसको हम सोतापन्न अवस्था कहते हैं, या फिर बोधिचित्त की निर्मिति, या सही शरण गमन वगैरह वगैरह कह सकते हैं। तो ये जो सोतापन्न की अवस्था है, ये अपना जो प्रोग्रेस है उसको 50% प्रोग्रेस कहा गया है। वहाँ 50% है आगे, और 50% हमें जाना है। और मैंने अनागामी का जो एरो बताया है, तो ये जो पहला सर्कल है, ये सर्कल कामलोक का सर्कल है। और जब तक कामलोक से हम बाहर नहीं निकलते, तब तक हम अनागामी नहीं बन सकते। यानी कामछंद और व्यापार पूरी तरह से जब निकल जाता है, तब हम अनागामी बनते हैं। लेकिन वहाँ उसके आगे भी सूक्ष्म इच्छा जरूर है, और भले ही हम इच्छा से मुक्त हो गए हैं, तृष्णा से मुक्त हो गए, फिर भी दो प्रकार की तृप्त इच्छाएं और भी है कि मुझे रूप लोक में जन्म लेना है, और दूसरी इच्छा है मुझे अरूप लोक में भी जन्म लेना है। तो ये दो इच्छाएं जो है, इसके आगे मैंने नहीं बताया वहां, तो वहां हम और सूक्ष्म इच्छा में अटके हुए हैं, लेकिन हम वापस नहीं आते, वापस नहीं आते, आगे आगे ही चले जाते हैं। और फिर वो जो सेंटर पॉइंट बताया है वो है बुद्धत्व, या बोधि जिसको कहेंगे, वो अवस्था है। तो कामलोक से जब तक हम नहीं निकलेंगे, तो श्रोतापन्न और अनागामी के बीच में जो अंतर है, तो उस अंतर में हम सकृतागामी अवस्था प्राप्त कर लेते हैं। तो सकृतागामी में हमने देखा कि कौन से संयोजन हम कमजोर करते हैं, कामराग और व्यापाद, ये संयोजन हम कमजोर करते हैं, तो वह सकृतागामी अवस्था बनती है। और दूसरी यानी पूरी तरह से उसको हम नष्ट करते हैं या खत्म करते हैं, तो वो है अनागामी अवस्था। तो कामराग और व्यापाद ये जब तक नहीं जाता, तब तक हम अनागामी नहीं बनते। और अनागामी का मतलब है, अभी ये यहां से सही मायने में स्पिरिचुअल लाइफ शुरू हुआ है। स्पिरिचुअल लाइफ का मतलब है ब्रह्मचर्य का जीवन, उसको स्पिरिचुअल लाइफ कहा गया है। अभी जो अरहंत बने हैं वो भले ही शादीशुदा होंगे पहले, लेकिन अरहंत जब बने तब वो इससे बिल्कुल अलग होते हैं, ये वासना से बिल्कुल मुक्त हो जाते हैं। तो हमने इतिहास में देखा है कि बहुत सारे शादीशुदा भी थे, बाद में वे अरहत पद तक पहुंच गए, लेकिन शादीशुदा होते हुए वो नहीं पहुंचे, तो वो अवस्था उन्होंने पूरी तरह से पहले ही ख़त्म कर दी है। और फिर ब्रह्मचर्य का जीवन वहाँ से वो उन्होंने शुरू किया है और फिर बुद्धत्व की अवस्था तक चले गए हैं। तो मेरा ख्याल है ये जो एक्सप्लेनेशन है ये पर्याप्त होगा आपके लिए। इसमें दो इसीलिए भी मैंने ये कहा कि ये स्पिरिचुअल लाइफ वहाँ से शुरू होता है, तो पहले पांच जो संयोजन है, तो पांच संयोजन उसको ओरम भागीय संयोजन कहा है, यानी निचले स्तर के हैं, निचले स्तर के हैं। हमें कामलोक से बंधे रखते हैं और 6 से 10 तक उद्धम भागीय संयोजन बताया है, वो हमें उच्च जो संयोजन है उससे बांधे रखते हैं, और वो है रूपलोक और अरूपलोक से बांधे रखते हैं, और फिर उसके आगे हम जाते हैं, उसके आगे है फिर मान, उद्धच्च और अविज्ञा। तो इस तरह से अगर हम देखते हैं, तो मैंने कहा कि हम आध्यात्मिक नहीं है, लेकिन आध्यात्मिक वहाँ ये जो ऊपर वाला सर्कल है ये इधर इधर है, लेकिन इसका मतलब यहाँ से शुरू हो गया, हमारा स्पिरिचुअल लाइफ शुरू हो गया है और हम श्रोतापन्न भी बने हैं स्पिरिचुअल लाइफ में, लेकिन पूरी तरह से अगर स्पिरिचुअल लाइफ पक्का अगर वो हम कहेंगे तो वो अनागामी अवस्था से हम शुरू करते हैं। तो ये थोड़ा सा क्लियर है क्या, क्या अभी भी नहीं है? अभी इससे आगे तो मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि उसका संदर्भ दिया है, आप संदर्भ में जा सकते हैं, देख सकते हैं, संगीति सूत्र दीर्घ निकाय में 33 नंबर, वो आप पढ़ सकते हैं, और आपकी जो कुछ शंकाएं हैं वो वहाँ पूरी कर सकते हैं। तो आगे चलेंगे हम, थोड़ा सा हमने कल भी देखा था विज्ञान, तीसरी जो कड़ी है वह है विज्ञान या कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस बहुत सारी जगह में ये शब्द हमें दिखाई देता है, नाम रूप में भी है और कहीं जगह भी है, अलग अलग जगह में कॉन्शियसनेस है, लेकिन यहाँ का कॉन्शियसनेस हम देख रहे हैं वो है गंधर्व से संबंधित है या पटिसंधि से संबंधित है, रीलिंकिंग से या रीबिकमिंग से संबंधित है। अभी कल तीन प्रकार से हमने जन्म कैसे होता है, पुनर्जन्म कैसे होता है वो देखने की कोशिश की, उसमें माता पिता का मिलन, फिर बाद में क्या है माता ऋतुमती होना, और तीसरी बात है पटिसंधि या गंधर्व ये भी उपस्थित होना। गंधर्व का मतलब है ऐसा यह सत्व है जो पुनर्जन्म लेने के लिए तैयार है, उसको गंधर्व कहते हैं। और सत्व यहाँ जो बताया है, जो बीइंग पैदा होने वाला है, वो है पुराने जन्म से संबंधित विज्ञान का अंतिम क्षण, पुराने जन्म से संबंधित विज्ञान का अंतिम क्षण। और जब मृत्यु होता है तो वो अंतिम क्षण उसकी शुरुआत है आगे के जन्म की। तो थेरवाद संप्रदाय के लोग मृत्यु और आने वाला पुनर्जन्म इसमें कोई भी अंतर नहीं देखते। मृत्यु होता है किसी व्यक्ति का और फिर जो पुनर्जन्म होता है उसमें कुछ भी अंतर नहीं है, ऐसा ये थेरवादी संप्रदाय के लोग समझते हैं। वे कहते हैं कि इस दोनों के बीच में कोई अंतर नहीं है, यानी लेकिन तिब्बती संप्रदाय के लोग जो है वो कहते हैं कि इस दोनों में कुछ अंतर है, मृत्यु में और नए जन्म में कुछ अंतर है। उसको उन्होंने बार्डो स्टेज कहा है, बार्डो अवस्था ऐसा उन्होंने कहा है। अभी ये दोनों भी जो संकल्पनाएं हैं अलग अलग संप्रदायों की, तो ये उस पर विवाद हो सकता है, उसमें बहस हो सकती है, डिस्कशन हो सकता है। अभी दूसरा एक प्रश्न यहां फिर खड़ा हो जाता है कि कौन और किसका जन्म होता है। जब मृत्यु के बाद जन्म हो रहा है ऐसा हम कह रहे हैं, तो कौन है और किसका जन्म हो रहा है। बुद्ध धर्म का जो अनात्मवाद है या अनात्म का सिद्धांत है, इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो किसका पुनर्जन्म होता है, क्योंकि वहां आत्मा नहीं है, अनात्मवाद में आत्मा नहीं है, तो फिर किसका पुनर्जन्म होता है ये देखना है। अभी यहां दो प्रकार के मत वाले लोग हैं, दो सिरे के विचार करने वाले लोग हैं। एक सिरा यह कहता है, एक्सट्रीम्स जिसको कहते हैं, कि पूर्व जन्म में जो व्यक्ति पूर्व जन्म में रहा हुआ व्यक्ति वर्तमान जीवन में पुनः जन्म लिया हुआ व्यक्ति, यह दोनों में कोई भी, दोनों भी एक है। पूर्व जन्म जिसका रहा है और अभी नया जन्म जिसने लिया है, ये दोनों भी अलग अलग बातें नहीं है, एक ही बात है, ऐसा एक मान्यता है। समझ में आएगा ये। पूर्व जन्म में रहा हुआ व्यक्ति और वर्तमान जीवन में पुनः जन्म लिया हुआ व्यक्ति, वो दोनों भी एक है, ऐसा एक संप्रदाय कहता है, ऐसी एक मान्यता है। जैसे वो पुराने जन्म में थे अभी नए जन्म में भी वही है, जैसे कि गायकवाड़ पहले के जन्म में भी था, अभी जन्म हुआ आदमी भी गायकवाड़ ही है, ये हमारे कॉमन नेम है। कामले पहले भी वही था और अभी भी वही है। अभी पोट फाड़े ये फाड़े, मैं वो नाम नहीं लेता है, गाल फाड़े पोट फाड़े। तो यहां इनका कहना यह है कि पुराना आत्मा जो है ये नए शरीर में आ गया है, पुराना आत्मा नए शरीर में आ गया है, ये ऐसी मान्यता है। भगवत गीता का बनते उदाहरण देते हैं कि भगवत गीता में क्या बताया है। भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि पुनर्जन्म क्या है, तो श्री कृष्ण कहते हैं कि यह मानो कपड़े बदलने वाली बात है। जैसे कि आप सुबह उठ जाते हैं और नए कपड़े पहनते हैं तो आप पुराने शरीर को छोड़ देते हैं और नए शरीर को अपनाते हैं। लेकिन आप में कुछ बदलाव नहीं आया है, खाली क्या हो गया है, सिर्फ आपके कपड़े बदल गए हैं। ये भगवद गीता का मानना है। अभी ये दो सब बातें जो है एक सिरे की हो गई। अभी दूसरा सिरा ये कहता है कि पुनर्जन्म का आदमी और इस जन्म का आदमी यह एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न है। ये दूसरी मान्यता है। पूर्व जन्म का आदमी और ये जन्म का आदमी ये बिल्कुल अलग है। ये पहले का जो सिरा है उसको शाश्वतवाद कहते हैं और ये दूसरा सिरा जो चल रहा है उसको उच्छेदवाद कहते हैं। इटर्नलिज्म एंड निहिलिज्म, ऐसे दो वाद है। तभी निहिलिज्म वाले लोग कह रहे हैं कि वो वही व्यक्ति नहीं रहता, वो अलग होता है, बिल्कुल अलग होता है। और यदि आगे उसका जन्म होने वाला है तो वो फिर दूसरा ही व्यक्ति होगा, वही आज का इस वर्तमान का व्यक्ति भविष्य में नहीं होगा। यहां ये सिरे के लोग ऐसा कहते हैं कि आपके शरीर की स्थिति ने आपके मन को इस तरह बदल दिया है कि जब आपने अलग शरीर धारण किया है तो आप उस आदमी को वही आदमी ऐसा नहीं कह सकते, यानी आपका मन भी वहां बदल गया है। अभी ये दोनों सिरों सिरे जो है ये बातें उस समय क्यों चलती थी, ये बुद्ध के जमाने में भी चलती थी, तो ये बातें क्यों हो रही थी, तो प्राचीन भारत में जब बुद्धकालीन भारत ऐसा हम कहेंगे तो उस समय प्रतीत्य समुत्पाद का सिद्धांत जब बुद्ध ने रखा था तो बहुत सारे विवाद चल रहे थे और अभी भी भारत में ये विवाद चालू है इस पुनर्जन्म को लेकर। अभी भी दो संप्रदाय है जो इस विवाद में पड़े हैं। एक संप्रदाय है उसका नाम है सत्कार्यवादिन, सत्कार्यवादिन नाम का एक संप्रदाय है। वह कहता है कि कर्म और विपाक ये दोनों एक जैसे हैं। कर्म का मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि पुराना जन्म, और विपाक का मतलब है नया जन्म, इस तरह से हम उसको ले सकते हैं। तो कर्म और विपाक यह दोनों एक जैसे हैं। यह संप्रदाय के अनुयायी ऐसा कहते हैं कि जब तथाकथित विपाक यानी परिणाम या नया जन्म दिखाई देता है वहां यही बात वास्तव में घटी है कि कर्म ने यहां अपना रूप बदल दिया है, ऐसा ये सत्कार्यवादिन लोग कहते हैं। यानी पहला जो व्यक्ति है उसने अभी विपाक में अपना रूप बदल दिया है। उन्होंने एक उदाहरण अच्छा दिया है भंते जी ने इसको समझने के लिए कि वे कहते हैं कि मानो आपके पास सोने का एक गोला है, सोने का गोला है तो उसको उन्होंने कर्म कहा है, एक सोने का गोला माने कर्म, और जिसके गहने बनाए जाते हैं तो वो हो गया विपाक, गहने बन गए तो वो विपाक हो गया। तो उनका कहना है कि ये सोना ही है, भले वो गोला हो या गहने बनाए हो तो भी वो सोना ही है, वो एक ही है। तो ये सत्कार्यवादीन लोग ऐसा सोचते हैं। अभी असत्कार्यवादीन लोग भी वहां मौजूद थे और वो क्या सोचते हैं कि वे सोचते हैं कि कर्म एक चीज है और विपाक बिल्कुल दूसरी चीज है, यानी पुराना जन्म एक दूसरी चीज है और नया जन्म एक दूसरी चीज है, अलग चीज है। और उनका मुद्दा स्पष्ट करने के लिए वे एक उदाहरण देते हैं और वो है दूध का दही बन जाता है। वास्तव में वो एक ही है क्योंकि दूध से ही दही बन गया, ऐसा उनका उदाहरण वो इसके लिए देते हैं। ये सत्कार्यवादी लोग नागार्जुन के समय बड़ी चर्चा में आए हुए लोग हैं और उसमें हिंदू लोग यह मुद्दा जो है उन्होंने सत्कार्यवादीन लोगों ने यह उठाया था। और असत्कार्यवादीन लोग उसी उन्हीं के जमाने में थे, उन्होंने उस समय सर्वास्तिवादीन और स्वतंत्रता का वाले लोगों ने ये मुद्दा उठाया था। यह सब फिलोसॉफिकल चल रहा है मेरा ख्याल है, ये सब ऊपर से ही जा रहा होगा लेकिन कोई बात नहीं क्योंकि ये सब फिलॉसफी है कि पुनर्जन्म ही फिलॉसफी है, ये है तो वो नहीं है। सीधा सीधा अभी हम बुद्धिज्म की जब और आएंगे तो ये फिलॉसफी खत्म हो जाएगी। अभी ये दोनों भी दृष्टिकोण सत्कार्यवादीन और असत्कार्यवादीन लोगों के जो दृष्टिकोण है कर्म और विपाक को लेकर या पूर्व जन्म और अभी का जन्म इसको लेकर जो विवाद उन्होंने खड़ा किया है, ये वास्तव में बुद्धिज्म से उसका कुछ भी लेना देना नहीं है। तो बौद्ध लोग इस विवाद को टालते हैं, दोनों भी जो सिरे की बातें हैं या सर्व सत्कार्यवादीन और असत्कार्यवादीन ये लोगों ने जो जो कुछ प्रश्न उठाए हैं, जो सवाल खड़े किए, वो दोनों को भी बुद्धिज्म टालता है। और बुद्धिज्म कहता है कि दोनों भी बातें गलत है। फिर बुद्धिज्म क्या कहता है? तो बुद्धिज्म कहता है कि ये जो पुनर्जन्म का सिद्धांत है वह प्रतित्य समुत्पाद पर आधारित है। और प्रतित्य समुत्पाद क्या कहता है कि एक चीज वह मानसिक हो या शारीरिक हो वह दूसरे चीज से उत्पन्न होती है। यह प्रतित्य समुत्पाद का सिद्धांत है, एक चीज से दूसरी चीज पैदा होती है। लेकिन बुद्धिज्म इस बात को भी टालता है कि दोनों चीजें समान हैं या अलग है, इसके बारे में बुद्धिज्म कुछ नहीं कहता क्योंकि ये समान है और अलग है इसमें ही विवाद ये बाकी के लोगों ने खड़ा किया है। अभी बुद्धिज्म में पुनर्जन्म क्या है? बुद्धिज्म कहता है कि ऐसा प्रश्न पूछना ही निरर्थक है कि जिसका पुनर्जन्म हुआ है वह व्यक्ति वही है या अलग व्यक्ति है, यह पूछना ही निरर्थक है बुद्ध कि जिसका जन्म हुआ है वो वही है या अलग है। बुद्धिज्म कहता है या प्रतीत समुत्पाद ये कहता है कि जिसका पुनर्जन्म हुआ है वह ना तो वह व्यक्ति है ना वह मृत्यु के बाद हुआ दूसरा व्यक्ति है, यानी वह व्यक्ति भी नहीं है और मृत्यु के बाद पैदा होने वाला दूसरा व्यक्ति है वह भी नहीं है। तो यहां बुद्धिज्म पुनर्जन्म को मानता है, लेकिन कौन सा पुनर्जन्म है यह समझ अगर हम समझ लेते हैं तो हमारी जो कुछ गलत फहमियां हैं वो दूर हो सकती है। बुद्धिज्म कहता है कि यहां ऐसा कोई भी नहीं है कि जिसका पुनर्जन्म होता है, लेकिन पुनर्जन्म तो होता है, लेकिन ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है कि जिसका पुनर्जन्म होता है। बुद्ध धर्म में अवतार की संकल्पना को बिल्कुल नकार दिया है। जो तिब्बती लोग अवतारों री इंकारनेशन ये जो बातें मानते हैं, तो बुद्धिज्म ने उसको नकार दिया है। अवतार का मतलब यह है कि शरीर में प्रवेश करना और बार बार दूसरे शरीर में प्रवेश करना। तो इस तरह से यह अवतार की संकल्पना तिब्बती संप्रदाय में मानी जाती है। इसका मतलब क्या होता है कि एक आत्मा है और वह आत्मा दूसरे शरीर में घुस जाता है, तो ऐसी तिब्बती लोगों की धारणा है। क्योंकि शरीर का आत्मा है वो मरता नहीं है और वो दूसरे शरीर में चला जाता है। वास्तव में यह बुद्धिज्म के थोड़ा सा विपरीत है, क्योंकि बुद्ध ही कहते हैं कि आत्मा नाम की कोई चीज नहीं है, तो दूसरे शरीर में जाने का सवाल आता ही नहीं। अभी ये पुनर्जन्म ये शब्द हम जो यूज कर रहे हैं तो बुद्धिज्म में इसको भी टाल दिया है, उसको पुनर्भव यह शब्द इस्तेमाल किया है। पुनर्भव रीबिकमिंग अगेन बिकमिंग, बाबा साहब ने बड़े अच्छी तरह से इस पुनर्जन्म की बात को बताया है। मैं बाबा साहब ने जो लिखा है वही पढ़ के बताता हूं। यह प्रश्न प्रायः पूछा जाता है कि मरने के बाद क्या होता है। बुद्ध के समकालीन आचार्यों के दो भिन्न तरह के मत थे। एक वर्ग आत्मवादी या शाश्वतवादी कहलाता था, दूसरा कहलाता था उसको उच्छेदवादी। जो शाश्वतवादी था उसका कहना था कि आत्मा का मरण होता ही नहीं, इसलिए जीवन शाश्वत है, पुनर्जन्म द्वारा इसका नवीनीकरण होता रहता है। उच्छेदवादियों का मत इस एक शब्द उच्छेदवाद से ही स्पष्ट हो जाता है। उच्छेदवाद का मतलब है हर वस्तु का संपूर्ण विनाश, मृत्यु के बाद कुछ भी शेष नहीं। भगवान बुद्ध शाश्वतवादी नहीं थे, क्योंकि इसका मतलब था कि एक पृथक नित्य आत्मा में विश्वास करना, जिसके वे विरोधी थे। तो क्या तथागत उच्छेदवादी थे? जब वे आत्मा का अस्तित्व स्वीकार नहीं करते थे तो स्वाभाविक तौर पर उन्हें उच्छेदवादी मानने की प्रवृत्ति हो सकती है, लेकिन अलगद्दम अलगद्दपम सुत्त में भगवान बुद्ध ने शिकायत की है, वे उच्छेदवादी नहीं है किंतु उन्हें उच्छेदवादी समझा जाता है। उन्होंने कहा है कि यद्यपि मैं इस मत को स्थापित करता हूं और इसी की देशना करता हूं, तो भी कुछ श्रमण भ्रामण भूल से गलती से मुझ पर झूठा इल्जाम लगाते हैं जो कि वास्तविकता के विरुद्ध है, कि मैं आदमियों के टुकड़े टुकड़े हो जाने की, नाश की, संपूर्ण विनाश की देशना करता हूं। यह ऐसा मत है जो कि मेरा मत नहीं है, जिस मत का मैं समर्थन नहीं करता, जो कि भूल से, गलती से और झूठे तौर पर ऐसे भले लोगों द्वारा मेरे सिर मढ़ा जाता है, जो मुझे उच्छेदवादी बनाना चाहते हैं। बाबा साहब भले लोग कहते हैं उनको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, हमारा जैसा कोई बोलता था तो ऐसा नहीं बोलता था कि भले लोग ऐसा कह रहे हैं। यदि यह कथन यथार्थ है और ऐसे लोगों द्वारा जो बौद्ध धर्म को ब्राह्मणी रंग में रंग देना चाहते थे प्रक्षिप्त नहीं है, तो इस कथन से मन में एक गंभीर दुविधा पैदा हो जाती है। यह कैसे हो सकता है कि भगवान बुद्ध आत्मा को भी नहीं माने और तब भी कहे कि मैं उच्छेदवादी नहीं हूं? इससे प्रश्न पैदा होता है कि क्या भगवान बुद्ध पुनर्जन्म मानते थे? क्या भगवान बुद्ध पुनर्जन्म मानते थे? उत्तर हां में है। यह अच्छा है कि इस प्रश्न को दो हिस्सों में बांट लिया जाए, किस चीज का जन्म और किस व्यक्ति का जन्म। यहां अच्छा है कि इन दोनों प्रश्नों को एक एक करके लिया जाए। पहले हम पहले प्रश्न को ही ले, पुनर्जन्म किस चीज का। प्रायः हमेशा इस प्रश्न की उपेक्षा की जाती है। यह दोनों प्रश्नों को एक बना देने का ही परिणाम है कि पुनर्जन्म की बात को लेकर इतनी गड़बड़ी है। भगवान बुद्ध के अनुसार चार भौतिक पदार्थ हैं, चार महाभूत हैं, जिनसे शरीर बना है, पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु। प्रश्न है कि जब शरीर का मरण होता है तो इन चारों महाभूतों का क्या होता है? क्या वे भी शरीर के साथ मर जाते हैं? कुछ लोगों का कहना है कि वे भी मर जाते हैं। भगवान बुद्ध ने कहा कि नहीं, आकाश में जो समान भौतिक पदार्थ सामूहिक रूप से विद्यमान है वे उनमें मिल जाते हैं। इस विद्यमान तैरती हुई राशि में से जब इन चार महाभूतों का पुनर्मिलन होता है तो पुनर्जन्म होता है। भगवान बुद्ध का पुनर्जन्म से यही अभिप्राय था। इन भौतिक पदार्थों के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वे उसी शरीर के हो जिसका मरण हो चुका है। वे नाना मृत शरीरों के भौतिक अंश हो सकते हैं। यही बात ध्यान देने की है कि शरीर का मरण होता है लेकिन भौतिक पदार्थ बने रहते हैं, यानी पृथ्वी, आप, तेज, वायु, ये बने रहते हैं। भगवान बुद्ध इसी प्रकार के पुनर्जन्म को मानते हैं। सारिपुत्र ने महाकोठित के साथ जो बातचीत की उसमें इस विषय पर बहुत प्रकाश डाला हुआ है। लिखा है कि एक समय जब भगवान बुद्ध श्रावस्ती में अनाथ पिंडक के जेतवनाराम में गए थे तो महाकोठित ध्यान कर चुकने पर सारिपुत्र के पास गए और उनसे कुछ ऐसे प्रश्नों को स्पष्ट कर देने की प्रार्थना की जो उन्हें हैरान कर रहे थे। उन प्रश्नों में एक यह था, प्रथम ध्यान की प्राप्ति होने पर कितने संयोजनों का प्रहण होता है और प्रथम ध्यान में कौन कौन से अंग शेष रहते हैं। सारिपुत्र का उत्तर था दोनों के पांच पांच, कामछंद, व्यापाद, थीनमिद्ध, आलस्य, उद्धच्च कौकृत्य तथा विचिकिच्छा का प्रहण हो जाता है, वितर्क, विचार, प्रीति, सुख तथा एकाग्रता शेष रहते हैं। महाकोठित कहते हैं चक्षु, श्रोत्र, घ्राण, जीवा और स्पर्श इन पांचों इंद्रियों को ले, प्रत्येक का विषय पृथक है, क्षेत्र पृथक है, प्रत्येक एक दूसरी इंद्रिय से पृथक पृथक है और स्पष्ट रूप से पृथक है। इनका अंतिम आधार क्या है, कौन है जो पांचों इंद्रियों के विषयों और क्षेत्रों का उपभोग करता है? सारिपुत्र ने कहा मन। महाकोठित ने पूछा ये पांचों इंद्रियां किस पर निर्भर करती है? सारिपुत्र ने कहा चेतना पर, यानी जीवित इंद्रिय उसको कहा है। महाकोठित पूछते हैं चेतना किस पर निर्भर करता है? सारिपुत्र कहते हैं उष्णता पर। महाकोठित पूछते हैं उष्णता किस पर निर्भर करती है? सारिपुत्र कहते हैं चेतना पर। महाकोठित पूछते हैं आप कहते हैं कि चेतना उष्णता पर निर्भर करती है और उष्णता चेतना पर निर्भर करती है, इसका ठीक ठीक क्या अर्थ समझा जाए? सारिपुत्र कहते हैं एक उदाहरण द्वारा समझाता हूं। जैसे प्रदीप के प्रकाश से प्रदीप की लौ प्रकट होती है और प्रदीप की लौ से प्रदीप का प्रकाश प्रकट होता है, उसी प्रकार चेतना उष्णता पर निर्भर करती है और उष्णता चेतना पर निर्भर करती है। महाकोठित कहते हैं ऐसी कितनी चीजें हैं जिनसे मुक्त होने पर ही शरीर मरा हुआ समझा जाकर सूखे कांट की तरह फेंक दिया जाता है? सारिपुत्र ने कहा जीवित इंद्रिय, उष्णता और विज्ञान। जीवित इंद्रिय यानी चेतना तो कहा है। महाकोठित पूछते हैं मृत देह में और उस ध्यानी भिक्षु में जिसने संज्ञा और वेदना का निरोध कर रखा है क्या अंतर है? सारिपुत्र कहते हैं मृत देह में न केवल शरीर, वाणी और मन की क्रिया शांत हो जाती है बल्कि चेतना, जिसको जीवित इंद्रिय कहते हैं, वह भी नहीं रहती, उष्णता भी नहीं रहती तथा इंद्रियों का भी मूलोच्छेद हो जाता है। जबकि ध्यानी भिक्षु की चेतना बनी रहती है, उष्णता बनी रहती है, इंद्रियां भी बनी रहती है, हाँ श्वास प्रश्वास बंद हो जाता है। इंद्रियों की वितर्क, विचार, संज्ञा आदि क्रियाएं शांत हो जाती है। संभवतः यह मृत्यु या उच्छेद की सर्वाधिक श्रेष्ठ तथा सर्वाधिक संपूर्ण व्याख्या है। इस संवाद में केवल एक कड़ी की कमी है। महाकोठित को चाहिए था कि वह सारिपुत्र से यह भी पूछते थे कि उष्णता से क्या मतलब है। सारिपुत्र ने क्या उत्तर दिया होता इसकी कल्पना आसान नहीं, लेकिन इसमें भी कोई संदेह ही नहीं कि उष्णता का मतलब है शक्ति। इस तरह से यदि उत्तर को थोड़ा अधिक स्पष्ट कर दिया जाए तो इस प्रश्न का कि मरने पर क्या होता है, यही उत्तर हो सकता है कि शरीर शक्ति उत्पन्न करना बंद कर देता है। तो इसे बहुत ही स्पष्ट हो गया होगा कि पुनर्जन्म क्या है। अभी और एक पढ़ के मैं यहाँ खत्म करता हूँ। यहाँ ट्रांसमाइग्रेशन जिसको कहते हैं, इसको संसरण कहा है कि एक से दूसरे शरीर में क्या जाता है या एक से क्या होता है। भगवान बुद्ध ने पुनर्जन्म की देशना की है, किंतु भगवान बुद्ध ने यह भी कहा है कि संसरण नहीं है। ऐसे लोगों की कमी नहीं थी जो भगवान बुद्ध पर यह दोषारोपण करते थे कि वे दो परस्पर विरोधी सिद्धांतों की देशना करते हैं। आलोचक प्रश्न करते थे, बिना संसरण के पुनर्जन्म हो ही कैसे सकता है? वे कहते थे कि यह बिना संसरण के पुनर्जन्म की बात की है, भला क्या कभी यह संभव है? इसमें कहीं कुछ भी विरोध नहीं है, बिना संसरण के पुनर्जन्म हो सकता है। राजा मिलिंद के प्रश्नों के उत्तर में भदंत नागसेन ने इसे अच्छी तरह समझा दिया गया है। बैक्ट्रिया नरेश मिलिंद ने स्थवीर नागसेन से प्रश्न किया, क्या भगवान बुद्ध पुनर्जन्म यानी संसरण मानते थे? स्थवीर नागसेन का उत्तर था, हां। तो क्या इसमें परस्पर विरोध नहीं? नागसेन कहते हैं, नहीं। क्या बिना आत्मा के पुनर्जन्म संभव है? स्थवीर नागसेन बोले, हां, ऐसा निश्चित रूप से हो सकता है। कृपया समझाए कि यह कैसे हो सकता है? राजा बोला, नागसेन, जहां संसरण नहीं है क्या वहां पुनर्जन्म हो सकता है? हां, हो सकता है, लेकिन यह कैसे हो सकता है, मुझे एक उदाहरण देकर समझाए। राजन, यदि एक आदमी एक दीपक से दूसरा दीपक जलाए तो क्या यह कहा जाएगा कि एक का संसरण दूसरी जगह हो गया? निश्चित रूप से नहीं। राजन, इसी प्रकार बिना संसरण के पुनर्जन्म होता है। मुझे एक और उदाहरण दीजिए। महाराज, क्या आपको कोई छंद कविता का चरण याद है जो आपने बचपन में आपने आचार्य से सीखा हो? हां, मुझे याद है। तो क्या वह छंद आपके आचार्य के मुंह में से निकलकर आपके मुंह में आया? निश्चित रूप से नहीं। राजन, इसी प्रकार बिना संसरण के पुनर्जन्म होता है। नागसेन ने कहा, नागसेन, बहुत अच्छा। राजा बोले, नागसेन, क्या आत्मा जैसी कोई चीज है? यथार्थ दृष्टि से सोचा जाए तो आत्मा जैसी कोई वस्तु नहीं है। नागसेन ने कहा, बहुत अच्छा। तो इस तरह से ये ट्रांसमाइग्रेशन और पुनर्जन्म की बातें जब हम देखते हैं तो इससे निश्चित रूप से अभी हम जान लेंगे कि पुनर्जन्म होता है, लेकिन वही आदमी दूसरा गायकवाड़ या कामले और फिर उभर नहीं आता। लेकिन वह बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चीज बताई है कि ये जो पृथ्वी आप तेज वायु है वो शरीर के बाद खत्म हो जाते हैं ऐसा हम कहते हैं, लेकिन ये बात वहां कही है कि वो खत्म नहीं होते। तो उसका ही फिर, क्योंकि इस कॉस्मास में, इस विश्व में ऐसे बहुत सारे यानी पृथ्वी आप तेज वायु जो जो लोग मर गए हैं उनके वहां विद्यमान है इस मंडल में, और फिर जब कोई मरता है तो उसका वहां उस वो पृथ्वी से वो आपसे वो मिलन हो जाता है और दूसरा कोई तो भी वहां निर्माण होता है, लेकिन वही वहां निर्माण नहीं होता, लेकिन कुछ ना कुछ तो निर्माण होता है। लेकिन आत्मा की बात यहां बिल्कुल कही नहीं गई है। ओ, ये क्यों? ये समझ में आया क्या? बाबा साहब ने बड़े अच्छी तरह से कहा है। बाबा साहब ने वो पुनर्जन्म कहा ही नहीं, वो क्योंकि हम जन्म बोले तो गड़बड़ हो जाती है हमारी, इसलिए पुनर्भव ही कहा है उन्होंने, यही शब्द का उपयोग किया है। पुनर वो ये यहां से दूसरा कोई निर्माण हुआ है ये हम जान मान लेते हैं, लेकिन यही मर गया और वो वहां पैदा हो गया बोले तो गड़बड़ हो जाती, और वैसा होता भी नहीं है।
और भी एक
जी बताइए,
वो बताते कि भाई जैसे कि आम है,
हाँ
अभी ये आम खाया आपने तो वो गुठली
गुठली
और वो आम उसको आम आ गए तो बोलते कि ये आम और ये आम एक जैसा नहीं है, है ना, लेकिन ये आम वो उसका अलग भी नहीं, लेकिन क्या बोले इस आम का वो बदलता होगा
बदलता
वो
यदि ये नहीं होता तो वो नहीं होता,
मतलब आपका आत्मा नहीं है कि आपके चेतना पर जो बदलने वाली प्रक्रिया शुरू है वो प्रक्रिया जो है वो ऐसा के बात
है उसमें मैं ज्यादा नहीं लिया वो नहीं बराबर वो भी उदाहरण है उसमें बाबा साहब के किताब में है वो
उसी का आपको बदलता है पुराने
चंद्रमती
और
अगली
एक नहीं है, लेकिन उससे अलग भी नहीं है
उसका बदलता है। तो यहाँ रुक जाएंगे फिर हम, और खाली तीसरी कड़ी हो गई आज और अभी कब होगा खत्म के पता नहीं है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।